ओम शांति। सर्मन ऑन द माउंट, पहाड़ी पर चढ़कर ईसा मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहा है। थिंक नॉट दैट आई एम कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ और द प्रोफेट्स, आई एम नॉट कम टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या संविधान या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नाश करने आया हूं, मैं नाश करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। वास्तव में जीसस क्राइस्ट तो आकर चला गया, बाइबल जो लिखी गई वो बाद में लिखी गई। बाइबल के दो भाग है, एक पुराना करार एक नया करार, न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जीसस क्राइस्ट के आने के पहले की सारी बातें, मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति और क्राइस्ट के पहले तक। न्यू टेस्टामेंट उसने जो जो कहा, उसने उसका जीवन, उसकी शिक्षाएं, वो सारी बातें उसमें है। तो न्यू टेस्टामेंट भी जो लिखा गया वो तो लगभग 100 वर्ष के बाद लिखा गया। एक दूसरा शिष्य था पॉल, सबसे ज्यादा वो जो संदेशवाहक था अपोसल, उसके द्वारा लिखा गया, संकलन किया गया। तो शिव बाबा ऑन माउंट अबू एंड जीसस क्राइस्ट ऑन माउंट सिनाई, इसमें अंतर यह है कि भगवान जो कह रहा है वो डायरेक्ट लिखा जा रहा है तुरंत। ये जो कुछ लिखा गया है शास्त्र, ये सब बाद में लिखे गए हैं। ये उसके सामने बैठ के कोई लिख नहीं रहा था। भगवान जब सुनाता है डायरेक्ट लिखा जाता है, ये अंतर है। और वो क्या कह रहा है कि ये नहीं समझना कि मैं अब तक जो लिखा गया है मेरे पहले, जो बताया गया है, उनको मैं नष्ट करने नहीं आया हूं, पर उनमें जो भविष्यवाणियां थी मेरे बारे में कि मैं आऊंगा, मैं उसे पूरा करने आया हूं। परंतु इसमें एक समस्या और भी है, क्योंकि वो तो यहां आके गया, उसके बाद भी कितने सारे आए। और वो कहता है मैं संपूर्ण हूं, मैं जो बता रहा हूं वो फाइनल है, पर उसके जाने के बाद भी कितने आए। उसके बाद तो मोहम्मद पैगंबर भी है, फिर उसका अपना अलग शाखा चालू हो गई। तो इसमें अंतर है इधर और उधर। अब ये क्या कह रहा है कि इसके पहले उनकी जितनी किताबें हैं, ओल्ड टेस्टामेंट पुराना करार, उसमें बहुत सारी भविष्यवाणियां है कि मसीहा आएगा, वो पैगंबर आएगा, वो ईश्वर पुत्र आएगा, वो दिव्य पुत्र आएगा, और उसके द्वारा सबका कल्याण होगा, सबका उद्धार होगा, वो तारनहार, वो तारक आएगा, वो मुक्तिदाता आएगा। और जीसस आकर कहता है वो मैं हूं। लोग कहते तुम, हमारे सामने तुम्हारा जन्म हुआ, हमने तुम्हारा बचपन देखा है, और तुम कहते हो तुम ही मसीहा हो। बाइबल में एक स्टेटमेंट से प्रोफेट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड इन देयर ओन कंट्री। इसके लिए जहां अवतार जन्म लेता है उस घर में उसका कभी अपमान नहीं होता है, उसका सम्मान बाहर होता है। क्योंकि वो कहते हैं हमने तो तुमको देखा है, तुम्हारा बचपन देखा है, और तुम आज अचानक बोलने लगे मैं मसीहा हूं। तो वो कहता है मैं जो आया हूं ये मत समझना, क्योंकि वो ऐसी ऐसी विद्रोही बातें करता है कि अब तक जो रूढ़िवादी था, अब तक जो सारा संसार जिसको मान रहा था, उनकी परंपरा है, उस हिसाब से चल रहा था आराम से, ये आके अचानक से नया ज्ञान देने लगा, अचानक से कुछ कुछ नई नई बातें बोलने लगा। तो वो पंडित, उनके धंधे का क्या होगा, उनके तो बिजनेस ही बंद करने में तो लगा हुआ है ये, उन्होंने दुकान खोल के रखी है, धर्म के ठेकेदार बैठे थे वहां पर, और ये अचानक एक नवयुवक आता है और कुछ नया नया, और लोग उसके पीछे जाने लगने, इनकी तो कस्टमर कम हो रहे हैं, जो अब तक इनके पास आते थे अब उसके पास जाने लगे, तो प्रॉब्लम तो हुआ ना। पर वो कहता है ये मत समझना कि मैं अब तक तुम्हारे जो बने हुए हैं, बाइबल के पहले मोसेस के 10 कमांडमेंट्स है ओल्ड टेस्टामेंट में, 10 कमांडमेंट्स अर्थात 10 श्रीमत हमारी भाषा में, कमांडमेंट अर्थात श्रीमत। तो ऐसी 10 शिक्षाएं हैं कि वो फॉलो कर रहे थे लोग, सब उसी को संपूर्ण मान रहे थे, जो यहूदी धर्म वाले, और वो किताबें बनी हुई थी धर्मशास्त्र, उसमें जैसा जैसा लिखा था सब लोग वैसा वैसा कर रहे थे, और उसके बीच में फिर ये पादरी, ये पोप और ये सारे आके बीच में बैठ गए और वो कमाई भी कर रहे थे अपनी। तो ये आके डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ रहा है माय फादर, तो गड़बड़ हो गई। तो वो कहता है ये मत समझना, लोग कहते तुम धर्म विरोधी हो, तुम धर्म ग्लानी कर रहे हो, ब्लास्फेमी जिसको कहते हैं, इसको तो जीने का अधिकार ही नहीं, इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए, इसको मार दिया जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक है हमारे लिए जो विद्रोह की आवाज उठाता है। तो वो कहता है ये ना समझो, थिंक नॉट दैट आई कम टू डिस्ट्रॉय, कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का नाश करने आया हूं, नाश करने नहीं, मैं तो पूरा करने आया हूं, उसमें जो भविष्यवाणियां लिखी है वो मैं पूरा करने आया हूं, ऐसा वो कहता है। आगे, फॉर वेरीली आई से अनटू यू, टिल हेवन्स एंड अर्थ पास वन जॉट और अदर टाइटल शैल इन नो वाइज पास फ्रॉम द लॉ टिल ऑल बी फुलफिल्ड, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा व बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। वो कहता है कि उसमें कि एक मात्रा और एक बिंदु भी, जो कुछ तुम्हारे शिष्य शास्त्रों में लिखा है अब तक के, मैं वो सब ये बताने नहीं आया हूं कि वो झूठ है, मैं तो ये बताने आया हूं कि उसमें जो लिखा है वो मेरे द्वारा सत्य होगा। अब ये ज्ञान और बाबा का ज्ञान, इसमें थोड़ा अंतर है। बाबा क्या कहते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है उससे मैं नहीं मिलने वाला। वो कहता है उसमें जो लिखा है वो असत्य नहीं है, वो सत्य है, पर मैं उसको सत्यापित करने आया हूं, वेरीफाई करने आया हूं। भगवान यहां कुछ और कहता है, पर भगवान कहता है उससे तो तुम मुझे पा ही नहीं सकते, जो करना है कर लो जितने शास्त्र पढ़ने हैं पढ़ लो, किसी भी धर्म से तुम मुझे नहीं पा सकते और जो पढ़ा है वो भी भूल जाओ तुम मुझे उससे पा ही नहीं सकते, क्योंकि ये भी बड़ा अथॉरिटी से बोल रहा है, इसके शब्द जो है एकदम अथॉरिटी वाले शब्द है, पर फिर भी वो थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा है पुराने शास्त्रों के साथ। भगवान एडजस्ट करता ही नहीं, वो कहता है मैं अब जो सुनाता हूं वो राइट है, कुठाराघात, मैं जो कहता हूं वही सत्य है, अब तक की तुम्हारी सारे सिद्धांत सारी रूढ़िवादी था सबको उखाड़ के फेंक दिया। बड़ी प्यार से, निर्माणता से, पुचकार से, तो ये कहता है जब तक आकाश और पृथ्वी है तब तक ये व्यवस्था तुम्हारी रहेगी, ये तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो रहेगा अब तक का, पर मैं उसकी पूर्णता हूं, वो उसको सत्य सिद्ध करने आया हूं। भगवान कहते हैं सत्य वो सब झूठ है, मैं जो कहता हूं वो सत्य है, उसी को सुनो अब बस। ये अंतर है दोनों में। आगे, हूसोएवर देयर शैल ब्रेक वन ऑफ दीज लीस्ट कमांडमेंट्स and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। ये जो शिक्षाएं मैं दे रहा हूं, इन शिक्षाओं को यदि कोई तोड़ता है और वैसा तोड़ना दूसरों को सिखलाता है, तो वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा पद पाएगा। परंतु जो कोई उन पर उनका पालन करेगा और उन्हें सिखलाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। जीसस क्राइस्ट स्वर्ग की बातें कर रहा है। अब तक स्वर्ग की बातें किसी ने की नहीं थी वहां पर। वो ऐसी बातें कर रहा है, इसके लिए लोग आश्चर्यचकित हो जाते, कुछ कुछ एकदम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते, कुछ कुछ तो उससे दूर रहना चाहते, ये बड़ा खतरनाक आदमी है, और कुछ कुछ उसके विरोध में, कुछ कुछ को जलन हो रही है कि लोग इसके पीछे क्यों जा रहे हैं। स्वर्ग यहां नहीं, स्वर्ग कहीं और है उनकी सिद्धांत में, पर स्वर्ग की परिकल्पना अवधारणा आई है। बार बार स्वर्ग का ही नाम लेता है, माई किंगडम इज नॉट द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड, बट दैट वर्ल्ड। वो जो कहता है मैं इस दुनिया का कुछ तुमको सिखा ही नहीं रहा हूं, मैं तुमको उस दुनिया के लिए तैयार कर रहा हूं। यहां क्या कह रहा है, ये जो छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, जो इन आज्ञाओं को तोड़ेगा और ऐसा ही तोड़ना दूसरों को सिखलाएगा, उसका क्या पद होगा स्वर्ग में? बहुत छोटा। और जो इन आज्ञाओं को पालन करेगा और दूसरों को पालन करना सिखलाएगा, उसका बड़ा पद होगा आज की साकार मुरली। तुम एक एक रूहानी टीचर हो, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में पढ़ाई होनी चाहिए, तो ही तुम दूसरों को सिखला सकते हो। सब जगह जाओ, आज दो विरोधी वाक्य है मुरली में, एक जगह कहा है तुम्हें कहीं नहीं जाना है, एक जगह कहा है तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है, एक जगह बैठ जाओ बस, दूसरी जगह कहा है तुम्हें तो मंदिर में जाना है। सबको समझाओ सबको समझाओ, ज्ञान को समझाओ, तुम रूहानी टीचर हो। और ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो आज्ञाएं हैं, ये जो कमांडमेंट्स है, ये जो श्रीमत है, ये जो डिक्टेट्स है, ये जो फरमान है, ये जो आज्ञा है, ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंस, जो भी कहो, जो मैं कुछ सिखाता हूं वो तुम दूसरों को सिखाओ। और जो ऐसा करेगा, अर्थात सेवा, ये हमारा सेवा का सब्जेक्ट है, जो मैं तुमको बता रहा हूं वो दूसरों को सिखाना, तो तुम्हारा पद ऊंच होगा। और जो ऐसा नहीं करेगा, ये दूसरी बात है यहां पर, जो खुद पालन नहीं करेगा और दूसरों को क्या सिखाएगा, कैसे पालन न किया जाए कैसे पालन न किया जाए, ट्रेटर, एंटीक्राइस्ट, ये सारे जो है इनका क्या पद होगा? बड़ा छोटा पद होगा। ही शैल बी कॉल्ड द लिस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन। बार बार किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ हेवन की बात करता है ये, वो राज्य, वो स्वर्ग का राज्य, हर बार कंपेयर करता है कि तुम यहां ऐसा करोगे तो स्वर्ग के राज्य में तुम्हें वैसा मिलेगा। बाबा की मुरलियों में वैसा ही आता है, यहां तुम ये करोगे तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा, यहां तुम ऐसा करोगे तुमको उच्च पद मिलेगा, इधर का कंपैरिजन उधर। तो ये बात थोड़ी सी सिमिलर है। आगे, फॉर आई से अनटू यू दैट एक्सेप्ट योर राइटियसनेस शैल एक्सीड द राइटियसनेस ऑफ द स्क्राइब्स एंड फैरसीज, ई शैल इन नो केस एंटर इन टू द किंगडम ऑफ हेवन। वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, ये इसमें उसके वाक्यों में ऐसा आया हमेशा मैं, पर उसका मैं भी बड़ा निरंकारिता वाला है, जैसे बाबा का मैं बड़ा निरंकारिता है, बार बार कहता है मैं। अगर भगवान के अलावा ये कोई दूसरा कहता तो झगड़े हो जाते, पर उसका जो मैं है कहना, उस मैं में निरंकारिता है। यहां इसका भी मैं बहुत निरंकारिता वाला है। क्या कहता है? मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, यदि तुम्हारी आध्यात्मिकता, वो जो शास्त्रवादी है और वो जो पंडित है फरीसीज, उनकी धार्मिकता से ज्यादा अगर नहीं होगी तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारी प्यूरिटी उनसे, उनकी प्यूरिटी से ज्यादा चाहिए। किनकी? जो पंडित है, जो स्क्राइब्स, जो धर्मशास्त्री है, जो वहां के फरीसीज है, वहां पर फरीसीज थे वो जो पंडित लोग थे, जिनको बड़ी ईर्ष्या होती थी। यहां वो चमत्कार करता था, वो लोग मीटिंग करते थे, इसने ऐसा कर दिया अब किसका कुछ करना पड़ेगा। इनके पास खबर आती थी, एक अंधा व्यक्ति था, इसने आंख दे दी, अब क्या किया जाए? उस अंधे व्यक्ति को बुलाते कंफर्म करने के लिए, बताओ क्या हुआ? वो कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे जन्म से दिखता नहीं था। तो क्या हुआ? वो कहता है मैं उसके पास गया, उसने कहा कि मिट्टी उठाओ, मिट्टी पे थूका और मेरे आंख में लगा दिया और कहा जाओ जाके आंख धो के आओ। आंख मैंने धोई और मुझे दिखने लगा। वो कहता है हम नहीं मानते, जाओ अपने माँ बाप को बुला के लाओ। उसके माँ बाप को बुलाते, माँ बाप से पूछते बताओ। वो कहते हैं हाँ हमारा बेटा तो जन्मांध पैदा हुआ था और अब ये दिखता है, अब इसको दिखता है। अब जलन हो जाती है, मतलब सत्य है, चमत्कार हुआ है, अब हमारा क्या होगा? लोग अब उसके पीछे जाएंगे, आज का गावड़े का छोरा हमारे सामने जितने जन्म लिया और अब मसीहा बन गया और हम बैठे हैं यहां पर। जीसस कहता है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी प्यूरिटी, तुम्हारी आध्यात्मिकता, तुम्हारा रूहानियत उनसे जब तक ज्यादा नहीं होगी, इससे तो उनको और जलन हुई, ये हमारे बारे में लोगों को भड़काता है। शास्त्रियों और फारिसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। हमारी प्यूरिटी संसार में हाईएस्ट है, कल कहा ना, उनकी पवित्रता कैसी है, रजो प्रधान पवित्रता, और हमारी पवित्रता कैसी है, सतो प्रधान पवित्रता। वो उस पवित्रता से महात्मा कहलाए जाते हैं, वहां पर प्रमाण देते हैं प्रकृति दासी का, और अपवित्र आत्माएं झुकती है, तो तुम्हारी पवित्रता कितनी बड़ी है। प्रकृति दासी होनी चाहिए, सारा संसार झुकेगा। तो धार्मिकता कहो, पवित्रता कहो, आध्यात्मिकता कहो, रूहानियत कहो, उन सब से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम वो कम सब नहीं कर सकते जो संसार के लोग कर रहे हैं, वो जो विकारों में डूबे हैं संसार के लोग, हम वो सब नहीं कर सकते। और जैसे कल रात में भी कह रहे थे, वर्तमान समय सबसे बड़ा विकार बढ़ने का कारण क्या है, इंटरनेट, इंटरनेट का अंतरजाल का माया जाल सबसे बड़ा कारण है। अध्ययन किए गए बहुत सारे और देखा गया लोग देखते क्या है, ऑनलाइन रहते हैं करते क्या है, किस वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, उस वेबसाइट्स की लिस्ट निकाली गई, ऐसे 800 कुछ वेबसाइट्स को तो बंद कर दिया गया भारत में। और फिर जैसे उन टॉप मोस्ट वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया, उसके डबल गुना और कई गुना अधिक दूसरी वेबसाइट्स खुल गई विदेशी कंपनियों की। ये भारत को खत्म करने का प्रयत्न है, क्योंकि भारत पर आक्रमण से, भारत तो बहुत शक्तिशाली है, भारत पर यदि आक्रमण करना है तो उसके चरित्र पर आक्रमण करो, ताकि कोई भगत सिंह, कोई उधम सिंह, कोई विवेकानंद, कोई दयानंद यहां पद पैदा ही ना हो, क्योंकि लोगों को खतरा इन लोगों से है, चरित्र से खतरा है। भारत का चारित्रिक पतन कर दो बस, सब ठीक हो जाएगा, उनका काम पूरा हो जाएगा, अपने आप गिर जाएंगे नीचे। वो रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण दिया करते थे, एक स्त्री का जो कि बहुत छोटी जाति की थी, पर बहुत ब्रह्मचर्य की पावर थी उसमें, बहुत प्यूरिटी थी, और उसकी इतनी प्रसिद्धि होने लगी, इतनी प्रसिद्धि होने लगी, तो वहां के जो बंगाल के धर्म धार्मिक लोग थे, उनको जलन होने लगी, अब क्या किया जाए, ये छोटी जाति की स्त्री और लोग उसके चरणों में गिरते, हमारे चरणों में गिरना चाहिए। उसके चरणों में जाके गिरते, वो एक मेथड, अब कैसे करे, लोगों को समझाओ तो और जाएंगे उसके पीछे, क्योंकि ऐसी धार्मिक बातें बड़ी नाजुक होती है। तो वह ऐसा षड्यंत्र करते हैं, ऐसा षड्यंत्र करते हैं कि कुछ ऐसे लोग या व्यक्ति को तैयार करते हैं जो कि उसके प्यार में पड़ता है या उसको फंसाता है, और फिर उसको गिराता है, उसके शील को भंग करता है, उसके ब्रह्मचर्य को भंग करता है, और जैसे ही वो भंग हो जाता है, खत्म, ये इधर चैन से आराम से बैठते हैं फिर, क्योंकि पावर तो ब्रह्मचर्य की थी, उसको खत्म कर दो, शांति। तो ये सारे इंटरनेट साइट्स, जिनको कुछ पता नहीं था उनको सब पता चलता है। प्यूरिटी की भी स्टेजेस है, जो दादियों की प्यूरिटी थी उस समय की, वो अलग थी, तब इंटरनेट कुछ था नहीं। जो सेकंड जनरेशन थी उसकी भी प्यूरिटी अलग थी। अभी जो वर्तमान का युग है, जेट एज, डिजिटल एज, पिछले 10 साल में प्यूरिटी का जो पतन हुआ है, बहुत तेजी से पतन हुआ है विश्व में, इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, बहुत जरूरी है। जो लोगों ने प्रतिज्ञा की थी, ब्राह्मणों ने, कि हम मोबाइल लेंगे नहीं, लोगों को लेने तो देखो कैसे टाइम वेस्ट कर रहे, आज उनके पास 3-3 मोबाइल है, और भेजना चालू है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी सदगुरुवार, हैप्पी अमृत वेला, थॉट फॉर द डे, और एक जगह सेवा क्या करने गए 50 फोटो भेज देते। अरे तुम्हारी सेवा का हमको क्या करना है, सजा है तुम्हारी, देखो हमारे फोटो, हमने ये सेवा की, ये हमारे सेंटर पर ये आया वो आया, ये आया फला आया वो आया, ये फोटो, ये सौगात, ये कैंडल लाइटिंग, अब देखते बैठो। बहुत अच्छी बात है सेवा की, ढिंडोरा पिटने की क्या आवश्यकता है, शांति से बैठे रहो। पर्सनल पकड़ पकड़ के 50-50 फोटो भेज देते, और भेजने वाला डिलीट, एक ही बटन में बिना देखे ऑल क्लियर। टाइम वेस्ट। आगे ई हैव हर्ड, ये पुरानी इंग्लिश है ई, ये अभी इंग्लिश में प्रयोग नहीं किया जाता है। तू जो होता है उसका अनेक वचन पहले ई था, ई, ई जब आएगा मतलब तुम सब, अभी तो यू कहा जाता है, यू अर्थात एक के लिए भी और अनेक वचन भी, सिंगुलर और अनेक वचन एक ही है। पर पुरानी जो इंग्लिश है, आर्केइक इंग्लिश, ये जो इंग्लिश यहां प्रयोग है ये अभी की इंग्लिश नहीं है, ये बहुत पुरानी इंग्लिश है, यहां पर यू को ई कहा जाता था, ई ऑल। तो वो कहता है ई हैव हर्ड दैट इट वॉज सेड बाय देम ऑफ ओल्ड टाइम थाउ शाल्ट नॉट किल एंड हु सो एवर थाउ शाल्ट, ये धाव अर्थात तू, एक वचन, ई अर्थात अनेक वचन, ई धाव, अभी तो दोनों के लिए यू शब्द है, शाल्ट वो एल टी लगाते थे, अभी खाली शाल है, तो धाव शाल्ट नॉट किल एंड हु सो एवर शाल किल शाल बी इन डेंजर ऑफ जजमेंट। अभी ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं यहां पर, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों का को कहना था कि हत्या नहीं करना, वो कहते थे कि हत्या नहीं करो और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, उसको दंडित किया जाएगा। अब मैं क्या कहता हूं वो सुनो, बट आई से अन टू यू दैट हुमसोएवर इज एंग्री विथ हिज ब्रदर विदाउट अ कॉज शैल बी इन डेंजर ऑफ जजमेंट। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। पुराने शास्त्र कहते थे कि तुम किसी को मारना नहीं हो, थाउ शाल्ट नॉट किल, जो मोसेस के 10 कमांडमेंट्स है, मूसा के, उसमें है पहला कि तुम किसी को मारना नहीं। पर मैं तुमसे कहता हूं कि क्रोध भी यदि तुमने किया तो तुमको भी वही दंड मिलेगा जो तुम किसी को मारते हो, तुमको कचहरी में खड़ा कर दिया जाएगा क्रोध पर। बाबा यहां केवल क्रोध ही नहीं, क्रोध के बहुत सारे बाल बच्चे उनका भी विस्तार करते हैं मुरलियों में, रोब, आवेश, उत्तेजना, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, चिड़चिड़ापन, ये सब क्रोध के बाल बच्चे हैं। और एक चीज है यहां पर, वो कहता है एंड हूसोएवर शेट से टू हिज ब्रदर राका शैल बी इन डेंजर ऑफ द काउंसिल बट हूसोएवर शैल से यू फूल शैल बी इन डेंजर ऑफ हेल फायर। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नर्क की आग के दंड के योग्य होगा। वो कह रहा है कि आपस में यदि कोई ये भी कहता है अपने साथियों से तुम मूर्ख हो तो इसकी सजा वही है। पुराने शास्त्र कहते थे कि हत्या नहीं करना, पर मैं क्या कह रहा हूं कि तुम क्रोध यदि करते हो, तुम अगर ये कहते हो कि तुम निकम्मे हो, तुम मूर्ख हो, तुम कुछ काम के नहीं हो, ये कहना भी क्या है, क्रोध ही है, और ये भी किसी को मारना ही है क्योंकि तुम किसी के चरित्र पर आक्रमण कर रहे हो। तो हंसी मजाक में भी किसी को कहना कि तुम पागल हो, पागल कही के, पापी कही के, हंसी मजाक में भी नहीं कहो, वो कह रहा है वेन यू से टू योर ब्रदर यू फूल यू शैल बी इन डेंजर ऑफ हेल फायर। हम बाबा ये तो चलो कहने की बात है, भगवान तो कह रहा है संकल्प भी नहीं, तुम्हें तो दूसरों को समान की दृष्टि से देखना है। आज की मुरली में तुम याद करते रहो तो लाइट नजर आएगी दूसरों को, साक्षात्कार होगा, तुम याद में रहोगे तो। दूसरों को सम्मान की नजर से देखना, श्रेष्ठ नजर से देखना, सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। और तुमको रिकॉर्ड कौन सा रखना है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड रखना है। वही बातें ये कह रहा है, हंसी मजाक से भी किसी को कह देना तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, तुमको ये समझ में नहीं आता है बुद्धू? ये सब कहना हंसी मजाक में भी, ये भी बड़ी पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि हमने तो हंसी मजाक में कहा पर सामने वाले को क्या हुआ वो तो हमको पता ही नहीं ना। ऊपर से उसने भी हंस दिया परंतु अंदर ही अंदर हर्ट हो गया, अंदर ही अंदर उसने कहा कि मुझे सबके सामने इसने ऐसा कहा था, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। प्लानिंग बनाएगा, अपनी योजना बताएगा, गुप्त योजना बनाएगा किसी के थ्रू। तो गलती से भी ये भूल ना हो। कल की मुरली में एक वाक्य था, पवित्रता अपवित्रता के लिए गलती से भी ये भूल मत करना। तो गलती से भी ये भी भूल मत करना, किसी का अपमान कर दिया। जैसे वो एक व्यक्ति था, बहुत बड़ी कंपनी थी और एक बार पार्टी चालू थी और पार्टी के बीच में कोई आकर उसका साथी उसका दोस्त उसको बहुत सारी फाइल दिखाता है और कहता है कि ये जो दो लोग हैं ना अंदर उसके एक युगल जो उसके कंपनी में काम करते हैं और जिन पर इसका बहुत विश्वास है उन दोनों ने मिलकर इसको फ्रॉड चीट किया है और उस कंपनी में ये सब हुआ है और इसको पता ही नहीं मालिक को। तो मालिक इतना क्रोध में आता है, बाहर आता है और सबके सामने उन दोनों की इंसल्ट कर देता है, बहुत जबरदस्त इंसल्ट करता है, ऐसी इंसल्ट करता है कि बहुत क्रोध में, और फिर कहता है अभी निकल जाओ यहां से। वो दोनों निकलते हैं, कार में बैठते हैं, वो कहते हैं ये कार कंपनी की है, चाबी निकालो पैदल जाओ। ऐसा अपमान होता है। उसके बाद इसके घर में कुछ कुछ होने लगता है, उसकी जो छोटी सी बच्ची होती है उसको कुछ कुछ होने लगता है, कभी गुम हो जाती है, कभी ऐसी देखने लगती है, कभी उसको दर्द होता है। बदला वो जो दो लोग थे, वो जो महिला थी, ब्लैक मैजिक करना चालू कर देती है, कुछ 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 करती है बदला। हम जब भी किसी का अपमान कर देते हैं वो व्यक्ति किस हद तक जाएगा ये बता नहीं सकते, कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी। इसके लिए गलती से भी हमने किसी को कह दिया तुम तो मूर्ख हो, इतना भी नहीं समझता है बेवकूफ, इतने दिनों से यहां रह के यही सीखा क्या, किस सेंटर से आए हो, इतना भी नहीं सिखाया तुम्हारी बहन जी ने, ये कैसे बना ना अपमान। तो वो आत्मा के ऊपर क्या प्रभाव होगा हम बता नहीं सकते, और हमें यह भी नहीं पता रहता है सामने वाला है कौन, वो कितनी महानताएं लेकर हमारे सामने आया है, हमें थोड़ी पता रहता है, और हमने उसको कुछ कह दिया तो यह बहुत बड़ा विकर्म हो जाएगा, पाप कर्म हो जाएगा। जैसे दिखाया है पांडव अज्ञातवास में एक साल थे विराट नरेश के पास, और वहां पे युधिष्ठिर था जो कंक था, वो गुलाम था उस राजा का, उस राजा ने कितनी बार उसका अपमान किया, पर अंत में एक साल के बाद जब उसको पता चलता ये सब पांडव थे, इतना उसको आत्मग्लानी होती है, इतनी आत्मग्लानी होती है। तब युधिष्ठिर कहता है इसलिए दुखी मत हो कि वो हम थे, परंतु एक व्यक्ति अपने जूनियर के साथ किस तरह व्यवहार करता है, अपने जो उसके नीचे है या लो पद कम पद पर है वो उसका चरित्र है, किस तरह से वो बात करता है उनके साथ में, सम्मान उनको देता है या नहीं देता है। हम एक हॉस्पिटल में थे हिंदुजा में, वहां पर वो जो लोग थे श्रमिक वर्ग उनको इतना अच्छे से वो पुकारते थे, जो यहां आकर हमको बहुत दुख हुआ, सब जगह क्या कहते हैं लेबर, एक लेबर को भेज दो, यहां लेबर्स की कमी है, ये अपमानजनक है थोड़ा सा। हमने देखा वहां हम हॉस्पिटल में हिंदुजा कैसे पुकारते थे, अनिल जी इधर आइए, सुनील जी इधर आइए, जी लगाते थे, और यहां पर दो लेबर भेज दो इधर बीच में इसके बारे में बात भी हुई थी और उसको चेंज भी किया गया बहुत बार, तो पर फिर भी कभी कभी बोलने में आ ही जाता है, पर फिर भी अभी काफी बेटर है। तो डायरेक्ट नहीं कहता है कोई, पर पहले कहते थे ऐसा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना सम्मान है, हर व्यक्ति का अपना सम्मान है, तो उसको वो सम्मान हमको देना है। तो ये वही कह रहा है यहां पर कि ये मत समझो कि तुम किसी को, बट आई से अन टू यू, पर मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, क्रोध करने वाला, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। किसी को कहेगा तुम निकम्मे, कुछ काम नहीं करते, खाते पीते सोते हो बस, इसलिए आए थे क्या यहां? वो क्या होगा? महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई यह कहे अरे मूर्ख, वह नर्क की आग के दंड योग्य होगा, वो उससे भी ज्यादा। तो हर एक महान आत्मा है, हर एक श्रेष्ठ आत्मा है। इसके लिए महात्मा गांधी ने कुछ शब्द का प्रयोग किया, हरिजन, हरि के जन है वो जो अछूत थे उनके लिए हरिजन। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने नया शब्द निकाला, दिव्यांग, जो अपाहिज है, दिव्यांग, पैरालाइज्ड है। तो हर आत्मा को श्रेष्ठ, चाहे नौकर हो, चाकर हो, कोई भी हो, वो कर तो कितने महान काम रहे हैं, श्रेष्ठ काम ही कर रहे हैं वो। साफ सफाई करना, अगर सोचो ये सब श्रमिक वर्ग छुट्टी पे चला जाए, हाउसिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, तो क्या होगा? मधुबन में जो रौनक है, सोचो ये सारे लोग छुट्टी पे चले जाए, क्लीनलीनेस क्लीनलीनेस जो लोग क्यों प्रभावित होते हैं मधुबन में, इनके वजह से। साफ सुथरा इतना ज्यादा है यहां पर, तो सबसे ज्यादा तो उनका सहभाग है इसमें, उनके वजह से। तो हम उनको सम्मान से, और हर व्यक्ति को क्या सुनना, सबसे अच्छा शब्द कौन सा लगता है सुनने को, उसका नाम। ए तुम इधर जाओ, ए तुम क्या कर रहे हो, हाँ। और उसमें भी भारत में जैसे हमने कहा ना, हम उस हॉस्पिटल में थे, तो जब भी सिस्टर पुकारेगी किसी को, बुलाना ना वो अनिल जी को भेज देना, इस तरह से बोलते थे। और मुंबई में वो मामा और वो मौसी, इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। पर राजस्थान में थोड़ा सा वो नहीं है थोड़ा, पर अभी बहुत उसमें ये हुआ है, चेंज तो आया है। पर फिर भी व्यक्तिगत रूप से हर एक को ध्यान रखना है कि दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना है, ये मत करना उसके लिए। तो ये आज की कुछ शिक्षाएं जो जीसस क्राइस्ट ने माउंट सिनाई के ऊपर खड़े रहकर अपने शिष्यों को दी। ओम शांति।